एकता फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकता एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आज हम गोता लगाएंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक बहुत ही खास रचना में।
हाँ, द ओल्ड मैन इन द सी।
हाँ,
1952 में आई थी ये, और मतलब इसने हेमिंग्वे को एक नई पहचान दी।
बिल्कुल, पुलित्जर मिला, फिर नोबेल पुरस्कार में भी इसका जिक्र हुआ। तो आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, है ना?
जरूर।
हेमिंग्वे, जिन्हें हम लॉस्ट जनरेशन के लेखक मानते हैं, उनकी लेखनी का जादू ही यही है, कम लव्स गहरा मतलब।
उनकी वो आइसबर्ग थियरी कि जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता, असली कहानी तो सतह के नीचे है।
हाँ, और इस उपन्यास में तो ये कमाल की दिखती है। साहस, मुश्किल हालात में भी गरिमा बनाए रखना और हार न मानने का जज्बा, ये सब कुछ है इसमें।
तो कहानी शुरू होती है क्यूबा के पास, है ना, एक छोटा सा गांव, हाँ, हवाना के पास, 1940 के दशक का अंत, और हमारे मुख्य पात्र हैं सैंटियागो, एक बूढ़े मछुआरे।
हाँ, अनुभवी, जिसके चेहरे और हाथों पर समंदर और मछलियों से जुड़ी कहानियां लिखी हुई हैं।
लेकिन आजकल उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही।
हाँ, वो 84 दिन वाला सिलसिला।
बिल्कुल, 84 दिन और एक भी मछली हाथ नहीं आई। गांव वाले इसे सलाओ कहते हैं, मतलब बदकिस्मती की हद।
कुछ लोग तरस खाते होंगे, कुछ मजाक भी उड़ाते होंगे।
हाँ, ऐसा ही होता है अक्सर, पर उनकी आंखों में अब भी वो समंदर वाली चमक है,
हाँ,
वो हारे नहीं है।
और उनका एक साथी भी है, मैनुएलिन।
हाँ, वो लड़का पहले सैंटियागो के साथ ही मछली पकड़ने जाता था, बहुत मानता है उन्हें।
लेकिन उसके घर वालों ने मना कर दिया है, क्योंकि सैंटियागो बदकिस्मत माने जा रहे हैं।
पर मैनुएलिन का लगाव कम नहीं हुआ। वो चोरी छिपे आता है, खाना लाता है, चारे का इंतजाम करता है।
वो सैंटियागो में वो देखता है जो शायद बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं।
उनका हुनर, उनकी हिम्मत। बिल्कुल, और शायद इसी लड़के का विश्वास और अपनी खुद की पहचान साबित करने की इच्छा सैंटियागो को एक बड़ा कदम उठाने पे मजबूर करती है।
गल्फ स्ट्रीम में दूर तक जाना,
हाँ, अपनी किस्मत को चुनौती देना।
ये चुनौती सिर्फ बाहर की नहीं है, है ना? मतलब सिर्फ समंदर या मछली की नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ तो वो विशाल मार्लिन है, प्रकृति की ताकत, लेकिन उससे बड़ा संघर्ष तो सैंटियागो अपने अंदर लड़ रहे हैं,
अपनी उम्र से, अपने शरीर की सीमाओं से,
अकेलेपन से।
और अपने उस ओरगुयो से, मतलब गर्व, स्वाभिमान। ये उन्हें ताकत भी देता है और शायद शायद मुसीबत में भी डालता है, ये सवाल बना रहता है।
और समंदर के लिए उनका नजरिया भी अलग है। वो उसे ला मार कहते हैं,
हाँ,
स्त्रीलिंग, जैसे कोई माँ हो या प्रेमिका। सम्मान भी है, प्यार भी। वो प्रकृति से लड़ते हुए भी उसका हिस्सा बने रहते हैं।
तो 85वां दिन, सैंटियागो सुबह होने से भी पहले निकल पड़ते हैं।
मैनुएलिन उन्हें छोड़ने आता है। वो बेसबॉल की बातें करते हैं, जो डिमाजियो की।
डिमाजियो जो दर्द में भी खेलते थे, सैंटियागो के लिए वो एक आदर्श की तरह हैं।
हाँ, हिम्मत और गरिमा का प्रतीक।
और सैंटियागो ठान लेते हैं कि आज वो दूर जाएंगे, गल्फ स्ट्रीम में।
और फिर दोपहर तक कुछ होता है।
हाँ, किस्मत दरवाजा खटखटाती है। एक बहुत बड़ी मार्लिन मछली कांटे में फंस जाती है,
इतनी बड़ी कि वो नाव को खींचने लगती है।
बिल्कुल, सैंटियागो को खुले समंदर में और दूर ले जाती हुई। और अब शुरू होती है वो लड़ाई, एक बूढ़ी आदमी और एक विशाल मछली के बीच।
ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है।
नहीं, ये धीरज की, इच्छा शक्ति की लड़ाई है। घंटों बीतते हैं, फिर दिन।
सैंटियागो का शरीर दुखने लगता होगा, हाथ छिल जाते हैं, बायां हाथ अकड़ जाता है।
हाँ, और वो अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। बस समंदर है, आसमान, कुछ पक्षी और वो मछली, जिसे उन्होंने देखा भी नहीं अभी तक।
यहीं हेमिंग्वे की वो कम शब्दों वाली शैली असर करती है। सैंटियागो ज्यादा बोलते नहीं, पर उनका हर एक्शन, हर आह बहुत कुछ कह जाती है।
वो मछली से बातें करने लगते हैं, उसे भाई कहते हैं। नफरत नहीं, सम्मान है।
बिल्कुल, एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के लिए सम्मान। वो महसूस करते हैं कि दोनों एक ही खेल का हिस्सा हैं, जिंदगी और मौत का।
वो कच्ची मछली खाते हैं ताकत बनाए रखने के लिए, रात में तारों को देखते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं।
हाँ, वो सियन फ्यूगोस वाला किस्सा, जब उन्होंने पूरी रात पंजा लड़ाया था, वो यादें उन्हें हिम्मत देती हैं।
फिर दूसरे दिन मछली सतह पर आती है
और सैंटियागो उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो नाव से भी लंबी है, बैंगनी धारियां, एक शानदार जीव।
अब ये लड़ाई और भी व्यक्तिगत हो जाती है, सम्मान की लड़ाई।
हाँ, तीसरे दिन तक दोनों थककर चूर हो जाते हैं। मछली अब नाव के चक्कर लगाने लगती है।
सैंटियागो समझ जाते हैं कि अब आखिरी दांव खेलने का वक्त है।
वो अपनी बची खुची सारी ताकत लगाते हैं, उसे करीब खींचते हैं और फिर हार्पून से सीधा उसके दिल पर वार करते हैं।
मछली मर जाती है, सेंटियागो जीत जाते हैं।
हाँ, जीत जाते हैं, पर ये एक बहुत थका देने वाली दर्द भरी जीत है।
और मार्लिन इतनी बड़ी है, शायद 18 फीट, कि उसे नाव में लाना नामुमकिन है।
तो वो उसे नाव के साइड में बांध देते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं। गर्व है पर एक अफसोस भी है उस महान जीव को मारने का।
उन्हें शायद लगता है कि ये उनका ओर्ग्यो ही था जो उन्हें इतनी दूर ले आया।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। समंदर अभी और इम्तिहान लेगा।
शार्क मछलियाँ,
हाँ, मार्लिन के खून की गंध उन्हें खींच लाती है। पहले एक बड़ी माको शार्क आती है।
सेंटियागो लड़ते हैं पर अपना हार्पून गंवा देते हैं।
फिर आती है गैलेनोस शार्क झुंड।
अब ये लड़ाई सम्मान की नहीं रही, ये तो बस अपने शिकार को बचाने की एक हताश कोशिश है।
बिल्कुल, वो चाकू से लड़ते हैं, फिर चप्पू से, फिर नाव के टिलर से। कुछ शार्क मारते भी हैं,
लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं।
हाँ, और वो मार्लिन के जिस्म को नोचती जाती हैं। ये बहुत ही क्रूर चित्रण है प्रकृति की निर्ममता का।
रात होते होते कुछ नहीं बचता
सिवाय एक विशाल सफेद कंकाल के, जो नाव के साथ बंधा है, एक खोखली जीत का निशान।
सांटियागो पूरी तरह से टूट चुके हैं, तन से, मन से।
देर रात वो बंदरगाह पहुंचते हैं, इतने थके हुए कि मस्तूल को कंधे पर उठाते हैं किसी क्रॉस की तरह और अपनी झोपड़ी तक ले जाते हैं।
और फिर गहरी नींद सो जाते हैं। उनके हाथ जख्मी हैं, कुछ लोग इसमें वो ईसाई संकेत भी देखते हैं, स्टिग्माटा जैसे।
अगली सुबह गांव वाले उस कंकाल को देखते हैं
और वो हैरान रह जाते हैं। अब उनकी आंखों में तरस या मजाक नहीं है,
सम्मान है। वो समझ जाते हैं कि इस बूढ़े आदमी ने क्या झेला है, क्या पाया और क्या खोया है।
और फिर मैनोलिन आता है।
हाँ, वो लड़का उस सेंटियागो के जख्मी हाथ देखता है और रो पड़ता है।
वो उन्हें दिलासा देता है, कहता है कि अब वो फिर से उनके साथ मछली पकड़ने जाएगा, चाहे घर वाले कुछ भी कहें।
वो कॉफी और अखबार लाता है। ये एक तरह का वादा है, एक भरोसा है कि सेंटियागो अकेले नहीं है। उनका ज्ञान, उनकी आत्मा, वो जिंदा रहेगी।
कहानी में एक अजीब सी विडम्बना भी है आखिर में।
हाँ, वो पर्यटक वाली बात। वो उस कंकाल को देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है,
और वेटर कहता है शार्क। वो मान लेते हैं कि ये शार्क का कंकाल है।
कितनी आसानी से एक महान संघर्ष का मतलब खो जाता है ना, अगर देखने वाले की नजर वैसी ना हो।
बिल्कुल। और उपन्यास का अंत होता है सेंटियागो के सपने से।
वो फिर से उन शेरों का सपना देखते हैं अफ्रीका के तट पर खेलते हुए।
ये शेर किसका प्रतीक है? खोई हुई ताकत, जवानी
शायद, या प्रकृति के साथ एक शांतिपूर्ण रिश्ता, एक सुकून भरी स्थिति। उनकी आत्मा अब शांत है शायद।
इस पूरी कहानी से जो बड़े विषय उभरते हैं, उनमें सबसे अहम शायद यही है, हार और जीत का मतलब क्या है।
हाँ, संघर्ष की गरिमा। सेंटियागो भले ही मछली को घर नहीं ला पाए, पर वो हारे नहीं, उनकी आत्मा नहीं हारी।
वो कहते हैं ना, आदमी हारने के लिए नहीं बना है।
उसे नष्ट किया जा सकता है, पर हराया नहीं जा सकता। ये शायद कहानी का सार है। सच्ची हार तब है जब आप कोशिश छोड़ दें।
और वो उर्गुए वाला सवाल भी, अभिमान, क्या वो अच्छा था या बुरा?
शायद दोनों। उसी ने उन्हें टिके रहने की हिम्मत दी और शायद उसी ने उन्हें जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाने पर मजबूर किया। हेमिंग्वे हमें सोचने के लिए छोड़ देते हैं।
प्रकृति के साथ इंसान का रिश्ता, वो भी बहुत अहम है। समुंदर दोस्त भी है, दुश्मन भी।
मार्लिन के लिए सम्मान, शार्क के लिए नफरत, ये प्रकृति के दोनों रूप दिखाता है, सुंदर भी और क्रूर भी।
और सेंटियागो की सहन शक्ति कमाल की है।
हाँ, वो मानवीय जिजीविषा, टिके रहने की क्षमता का प्रतीक है, जो डिमैगियो का जिक्र बार बार इसी बात पर जोर देता है, दर्द सहकर भी अपना काम करना।
और हेमिंग्वे की भाषा
बिल्कुल तराशी हुई, हाँ, सीधी, सपाट पर असरदार। आइसबर्ग की तरह सतह के नीचे बहुत कुछ छिपा है। शेर, मार्लिन, शार्क, ये सब प्रतीक कहानी को और गहरा बनाते हैं।
इस कहानी को पढ़ना या सुनना भी एक अनुभव है। आप सेंटियागो के साथ महसूस करते हैं, उनका दर्द, उनकी खुशी, उनका नुकसान।
हाँ, और अंत में एक अजीब सी शांति मिलती है, एक सम्मान उस बूढ़े आदमी के लिए, और शायद ये सवाल कि हमारे अपने जीवन में जीत और हार के मायने क्या हैं।
बिल्कुल, शायद यही बात इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाती है। ये सिखाती है कि असली गरिमा बाहरी नतीजों में नहीं है,
बल्कि उस अटूट जज्बे में है, उस सम्मान में है, जो हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिखाते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।